समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
आकाशवाणी गोल्ड पर एक नई सुबह का आगाज हो चुका है और रोज की तरह नए सप्ताह की ये नई सुबह बिलाई है एक नए उजाले के साथ, एक नई उम्मीद की किरण। तो आइए स्वागत करते हैं आज के दिन का। और श्रोताओं, इसी के साथ शुरुआत करते हैं न्यूज मैगजीन आज सवेरे की, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं देश विदेश के ताजातरीन समाचार, साथ ही वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के सेडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट सायरा मुश्तबा। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार और सायरा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
Good morning to you as well, Siddharth. Namaskar, Radhab, and a warm welcome to all our listeners who have just joined us in Aaj Savere. And of course, today is Monday, so some of you are probably affected by Monday blues, while others are all energized up and kept up, looking forward to the week. And of course, to this show where we bring you an amalgamation of news, of metro news, so that you can know what is happening in your city, we will take the weather's condition too. And of course, the last section, the much sought after and much looked forward to, in which we remember some of the personalities who either have their birthdays, birth anniversaries, or death anniversaries. All of that in the next roughly 22 minutes now. So let's start with the show.
जी हाँ, सारा नजर डालते हैं तक के मुख्य समाचारों पर। प्रमुख राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेता आज केरल में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। राज्य में लोकसभा चुनाव दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज आलाथुर संसदीय क्षेत्र में चेरुवातानी और कट्टाकाडा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। कट्टाकाडा से विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भाजपा के उम्मीदवार हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बृहस्पतिवार को केरल में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वायनाड लोकसभा सीट से उम्मीदवार राहुल गांधी आज और कल क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। मार्क्सवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी आज कासरगोड तथा कन्नूर में चुनाव प्रचार करेंगे।
The Supreme Court will hear a plea today by Delhi Chief Minister and AAP leader Arvind Kejriwal challenging his arrest by the Enforcement Directorate or ED in the liquor policy case. A bench of Justices Sanjeev Khanna and Dipankar Datta will be hearing the case. On the 9th of this month, the Delhi High Court had rejected AAP leader's petition challenging the arrest. While dismissing the plea, the Delhi High Court said the ED was in possession of enough material which led to Chief Minister Kejriwal's arrest. The AAP leader was arrested on the 21st of March by the ED in connection with a money laundering case linked to the Delhi excise policy scam. The court had on 1st of April sent Chief Minister Kejriwal to judicial custody till today in the case.
बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए जमुई, नवादा, औरंगाबाद और गया क्षेत्र में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इन क्षेत्रों में 19 अप्रैल को चुनाव होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और महागठबंधन के स्टार प्रचारक प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जदयू के प्रत्याशी के समर्थन में जमुई और बांका में जनसभा को संबोधित किया। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद ने महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में इमामगंज और वजीरगंज, कोआकोल, झाझा और फुल्लीदुमार और बांका में चुनावी रैलियां की।
कांग्रेस अनाउंस्ड द नेम्स ऑफ 10 मोर कैंडिडेट्स फॉर लोकसभा पोल्स यस्टरडे। फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी विल कंटेस्ट फ्रॉम जालंधर। पार्टी हैज फील्डेड कन्हैया कुमार फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट, व्हाइल जेपी अग्रवाल विल फाइट फ्रॉम चांदनी चौक कंस्टिट्यूएंसी। उज्ज्वल रेवती रमन सिंह इज द पार्टीज कैंडिडेट फ्रॉम इलाहाबाद।
विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर से बात की। डॉ जयशंकर ने एमएसजी एरिस की 17 भारतीय चालकों की रिहाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा की। उन्होंने तनाव बढ़ने से बचने, संयम बरतने और कूटनीति की ओर लौटने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेता संपर्क में बने रहने पर भी सहमत हुए हैं।
And United States officials said that President Joe Biden has told Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu that Washington would not participate in any offensive action against Iran. Over 300 drones and missiles were reportedly fired at Israel overnight, which Iran said was in response to an strike that occurred on 1st of April on its consulate in Syria. Almost all weapons were shot down by Israeli, U.S. and allied forces before they reached their targets. Officials said President Biden has urged Israel to consider its response carefully. Speaking to reporters, a senior administration official said that Mr. Biden told Israeli Prime Minister to think very carefully and strategically about how his forces replied to the unprecedented action, the first direct attack by Iran on the country. About 99% of the missiles, drones and cruise missiles launched during Iran's retaliatory operation were shot down or intercepted, which U.S. officials point to as a sign of Israeli military superiority over Iran. U.S. aircraft and naval vessels shot down dozens of Iranian projectiles as the attack took place. More than 80 drones and at least 6 ballistic missiles were downed by U.S. aircraft and vessels or by air defense forces over Iraq. Meanwhile, the U.S. highlighted its role in helping Israel thwart Iran's aerial attack, as President Joe Biden convened leaders of the group of 7 countries in an effort to prevent a wider regional escalation and coordinate a global rebuke of Tehran.
नवरात्रि की शुरुआत से 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन किए। श्राइन बोर्ड के अनुसार रामनवमी तक भीड़ रहने की उम्मीद है। श्राइन बोर्ड ने भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर के सभी 3 द्वार खोल दिए हैं। हर दिन 40,000 से 50,000 तीर्थयात्री मंदिर में दर्शन के लिए कटरा पहुंच रहे हैं।
And the India Meteorological Department, or IMD, has forecast that the ongoing rainfall, along with moderate thunderstorms, lightning, gusty winds and hail, will continue to persist over northwest India for the next 24 hours and abate thereafter. It said that light to moderate rainfall with moderate thunderstorms, lightning and winds gusting up to 40 km per hour is expected over Jammu, Kashmir, Ladakh, Gilgit, Baltistan, Muzaffarabad, Himachal Pradesh and Uttarakhand today. Whereas West UP, Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, Rajasthan and Madhya Pradesh are expected to witness scattered to fairly widespread rainfall with thunderstorms, lightning and gusty winds up to 40 km per hour today. Meanwhile, the IMD said that Delhi will witness a generally cloudy sky with light rain today. Maximum temperature in the national capital is likely to hover around 33 degrees Celsius during the day hours today.
और अब बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल क्रिकेट में कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 20 रन से हरा दिया। इससे पहले कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हराया। आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और श्रोताओं, कार्यक्रम आज सवेरे में अब वक्त हो चला है मेट्रो न्यूज का, और सबसे पहले चेन्नई की खबरों के साथ हैं सायरा।
थैंक्स सिद्धार्थ, लेट्स स्टार्ट विद चेन्नई। चेन्नई एज़ यू सेड, द ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन हैज इनवाइटेड इन्फ्लुएंसर्स टू हेल्प कन्विंस पीपल टू वोट एज पार्ट ऑफ इट्स सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशनल एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम्स। The influencers have been asked to tag the corporation's social media account while posting. The voters have been requested not to skip voting on 19th of April. The message also conveys that voting is not only the duty of the citizens, but also something to be proud of during the democratic festival of elections. Moving on to increase job opportunities and integrate latest technology, Madras Sanskrit College is planning to offer courses such as drone technology, robotics and artificial intelligence in Sanskrit. The college is also having a tie-up with TCS to develop new technical courses for Sanskrit students. Moving on to Bengaluru, Karnataka State Chief Electoral Officer Manoj Kumar Meena has informed that the poll officials will have door-to-door visits in Bengaluru to encourage voters to cast their vote on 26th of April. Addressing media persons in Bengaluru, he said that the election office has identified around 3,500 polling booths in Bengaluru, which had recorded low voters turnout in the previous elections, and efforts are on to improve the electoral participation in this Lok Sabha election. He also said that apart from social media postings, the water company BWSSB, power company BESCOM and other government departments will be sending text messages to their customers to vote without fail in the Lok Sabha elections. He informed that 43 urban areas and around 5,000 polling booths are also across the state had registered lower voters turnout due to various reasons. He pointed out that migration is one such problem, especially in the Kalyan Karnataka region, where villagers migrate to urban areas in search of jobs during the summer season.
और नजर डालते हैं राजधानी दिल्ली के समाचारों पर. और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनाव आयोग मतदाताओं में वोटिंग को लेकर जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम चला रहा है. इसी के अंतर्गत जागरूकता बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने स्वीप पहल के तहत कल न्यू मोतीबाग जिला में मतदाता सूची में अपना नाम जांच अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने लोगों से आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए अपील की. इसके अलावा चुनाव आयोग ने दक्षिण पश्चिम दिल्ली स्थित एसएसएस काकरोला सरकारी बालिका विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके द्वारा उन्होंने युवा मतदाता के बीच मतदान हेतु जागरूकता बढ़ाई. बढ़ते अगली खबर की ओर. अम्बेडकर जयंती के अवसर पर कल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने डॉ भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की. एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से श्री सक्सेना ने कहा कि बाबा साहेब के संवैधानिक और लोकतांत्रिक नैतिकता के आदर्शों का उल्लेख देश के संविधान के पाठ में नहीं किया गया है, क्योंकि उनका मानना था कि ये आदर्श लोगों के दिल और दिमाग में स्थापित है. और अब नजर डालते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की खबरों पर. जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है सायरा, रेलवे भी अपने यात्रियों को सुविधा देने के लिए विभिन्न योजनाएं बना रहा है, कदम उठा रहा है. और यात्रियों को गर्मी से कुछ राहत देने के लिए पश्चिम रेलवे ने शीतल अभियान के तहत अपने सेंट्रल डिवीजन के लिए निर्धारित संख्या में 35% अधिक वाटर कूलर लगाए हैं. रेलवे ने कहा है कि मुंबई के सेंट्रल डिवीजन में 144 वाटर कूलर हैं, लेकिन रेलवे ने अब तक 194 ऑपरेशनल वाटर कूलर स्थापित कर दिए हैं, जो कि पहले से 35% अधिक है. रेलवे ने स्टेशनों में गर्मी की डिग्री का मूल्यांकन भी किया है और यात्रियों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए आवश्यक जो दूसरी सुविधाएं हैं उनका भी आकलन किया है, जिसमें पंखे, प्रतीक्षालय में एसी जैसी सुविधाएं शामिल हैं. रेलवे ने कहा है कि वो जल्दी ही स्टेशन परिसर में सूचना प्रसारित करेगा कि खुद को हाइड्रेटेड कैसे रखें और गर्मी से कैसे बचाव करें, और अगर कोई लू से पीड़ित हो तो क्या करना चाहिए. डिवीजन के सोशल मीडिया हैंडल VR मुंबई पर एक सोशल मीडिया अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसने लोगों को गर्मी से बचने के तरीके और पानी बचाने के बारे में जानकारी साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा. कल अंधेरी स्थित एक कपड़ा फैक्ट्री में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए. मुंबई फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के अनुसार आग दो मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के भूतल में लगी, जिसमें गोदाम और एक कारखाने के साथ एक कपड़े की दुकान थी. तो ये थी मुंबई की खबरें. और सायरा, अब हैदराबाद से आपके पास क्या खबरें हैं?
Well, today we just had news from Bengaluru and Chennai. What is the next city that you have?
जी हाँ, अब देश की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता पर नजर डालते हैं. कोलकाता के कैथेड्रल रोड में राज्य स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया. पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्ला कैलेंडर के पहले दिन को पश्चिम बंगाल का राज्य दिवस घोषित किया है. कल बांग्ला नववर्ष का पहला दिन था, पोइला बैशाख. पोइला बैशाख बांग्ला भाषी लोगों की समावेशी और उत्सव धर्मी संस्कृति का प्रतीक है, उसे लोग बेहद उत्साह के साथ मनाते हैं. तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार. और श्रोताओं, अब मौसम का हाल लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। और जैसा कि लोगों को गर्मी से दिल्ली में थोड़ी राहत मिली है, और क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हल्की बारिश हो रही है और सुबह के वक्त तो ठीक ठाक सा मौसम सायरा रहता है, और इसके साथ ही बारिश के कारण कल वायु गुणवत्ता में भी काफी सुधार देखने को मिला है। आज की बात करें तो आज भी दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान 20 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मुंबई की बात करें तो वहां पर मौसम साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। कोलकाता की बात करें तो वहां भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और तापमान न्यूनतम रहा 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और सायरा, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में मौसम कैसा रहने वाला है?
All these three cities are going to have a partly cloudy sky today. In Chennai, the temperatures will hover between 27 and 37 degrees Celsius, while in Bengaluru, the temperatures would hover between 22 and 35 degrees Celsius. In Hyderabad, the minimum temperature was 25, while maximum will be around 37 degrees Celsius. And now, Siddharth, we have come to that section in which we remember those events that took place on this day.
बिल्कुल, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं क्योंकि इतिहास जो है वो हमें बहुत सारी सीख देता है। और सबसे पहले चलते हैं 1689 में, जब फ्रांस ने स्पेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी।
वेल, हिस्ट्री इज रिप्लीट विद वॉर्स, और आपने कहा कि इतिहास हमें क्या सीख देता है। सीख तो यही देता है कि वॉर्स नहीं होना चाहिए, बट एज वी से हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। बट वेल, ऑन अ पॉजिटिव नोट, समथिंग हैपेंड ऑन दिस डे इन 1817, द फर्स्ट अमेरिकन स्कूल फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड वॉज ओपन इन कनेक्टिकट इन द यूएस। The school imparted primary and secondary education to children with disabilities and received a federal grant for its operations.
और सारा, अगर हम देखें तो धीरे धीरे अगर मेट्रोज की लाइफ की हम बात करें तो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण होती जा रही है, और जो जिंदगी की आपाधापी है उसमें लोग कई बार इतने ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं जिसके दुष्परिणाम उनकी जो लाइफ स्टाइल डिजीजेस उसमें देखने को मिलती हैं। और इसी को लेकर एक बड़ी चीज जो डायबिटीज की बात होती है, क्योंकि भारत को डायबिटीज की राजधानी या कैपिटल कहा जाता है क्योंकि यहां पे इतने ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो लाइफस्टाइल में अगर हम सुधार करें तो हम इससे निजात पा सकते हैं। और इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1923 में आज ही के दिन डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए इंसुलिन बाजार में उपलब्ध हुआ था, और ये इंसुलिन की वजह से जिनकी डायबिटीज ज्यादा होती है तो उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं सारा। तो ऐसे में अपने रूटीन को आपको ठीक करना पड़ेगा, अपने खान पान को ठीक रखना पड़ेगा, और साथ ही मेट्रो की जो बिजी लाइफ स्टाइल है उसके साथ अपनी को एडजस्ट करना पड़ेगा।
वेल, आई बिलीव दैट वी ऑल प्रे दैट ऑल्दो इंसुलिन वॉज डिस्कवर्ड एज अ ड्रग, यू कैन से एज अ क्योर फॉर पीपल अफेक्टेड विद डायबिटीज, बट हम दुआ यही करेंगे दैट ऑल लिसनर्स एंड पीपल दे डोंट गेट टू दैट स्टेज वेयर दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन। सो एज यू मेंशन, इट्स अ लाइफ स्टाइल डिजीज, इट्स वेरी मच रिवर्सिबल बाय फॉलोइंग अ गुड लाइफ स्टाइल, एंड एज यू सेड दैट स्पेशली इन द सिटीज वी हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ waking at odd hours and staying awake till late night, eating at odd hours, especially we in the media also do that, unfortunately. But people who are more attuned with nature, jo bhi prakriti ke saath chalta hai, suraj ke saath ugta hai, suraj ke saath khud bhi dhas jata hai ya so jata hai, that is I think very important.
Bilkul, to isliye ab apni lifestyle mein badlav ka samay hai.
On this day in 1912, a very important and tragic event took place. Well, the Titanic sank off the Newfoundland in Canada on this day. At 2:20 a.m. on 15th of April, the British ocean liner Titanic sank into the North Atlantic Ocean, about 400 miles south of Newfoundland in Canada. The massive ship, which carried 2,200 passengers and crew, had struck an iceberg. The Titanic was designed by the Irish shipbuilder William Perry and built in Belfast, and it was thought to be the world's biggest ship then.
बिल्कुल, और अगर हम देखें तो भारत में एक से एक खूबसूरत राज्य हैं, और हिमाचल की अगर हम बात करें तो उसका क्या ही कहना। 1948 में आज ही के दिन हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी।
Yes, it was included as part of the sea state of post-independent India. Later, on this day 1976, India announced sending its envoy to Beijing for the first time in 15 years.
और 1994 में आज ही के दिन भारत सहित 109 देशों द्वारा गैट समझौते की स्वीकृति दी गई थी।
On this day in 2019, the historic Notre Dame of Paris caught fire during a restoration campaign and the blaze destroyed most of the cathedral's roof, the 19th century spire and some of the rib vaulting. Also, on this day in 2020, South Korea held national elections under COVID-19. It became the first democratic country to conduct national elections under the threat and restrictions of the COVID pandemic. And we all know that today is World Art Day. This day is celebrated across the world as a tribute and celebration of the work and contribution of the famous artist Leonardo da Vinci. It promotes awareness and appreciation of art and different art forms.
बिल्कुल, जैसा कि सारा ने कहा तो अब समय हो चला है कार्यक्रम आज सवेरे में उन लोगों को याद करने का जो आज के दिन हमसे मिले या जुदा हुए। और जैसा कि अभी आपको बताया कि आज ही जयंती है लियोनार्डो दा विंची की, जो इटली के महान चित्रकार, आविष्कारक, संगीतज्ञ, मूर्तिकार, वैज्ञानिक, आर्किटेक्ट और टाउन प्लानर थे। आपको ये भी जानकर हैरत हो रही होगी कि किसी इंसान के अंदर सारा इतने हुनर कैसे हो सकते हैं।
Yes, he was a natural genius, I guess. And though he's famous for his artworks, especially Mona Lisa and The Last Supper, but he crossed so many disciplines, Siddharth, that he probably epitomized the term Renaissance man.
बिल्कुल, तो उनकी इसी बहुमुखी प्रतिभा के कारण उन्हें यूनिवर्सल मैन की उपाधि दी गई थी। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के प्रसिद्ध शहर फ्लोरेंस के निकट विंची में हुआ था। लियोनार्डो दा विंची का बचपन अपने दादा के घर में बीता था। सन 1469 में लियोनार्डो के पिता उनके साथ फ्लोरेंस आ गए, जहां पर उन्होंने वहां पे रहे और वहां उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। स्कूल से ही लियोनार्डो की प्रतिभा सामने आने लगी थी, जबकि गणित की मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का समाधान वो चुटकियों में कर लेते थे। और उन्होंने अगर देखें तो 14 वर्ष के जब वो थे तभी उनके मन में मूर्तियां बनाने का शौक उभरा था, और उन्होंने ऐसी ऐसी कला अब प्रदर्शित की जिसकी प्रशंसा सभी ने की थी। और अगर कुछ उनके बारे में हम देखें तो दूसरे रोचक तथ्य भी हैं। लियोनार्डो दा विंची पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने आकाश का रंग नीला होने का सही कारण बताया था। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा सूरज से आने वाली रोशनी को बिखेर देता है और नीले रंग में बाकी रंगों की तुलना में फैलने की क्षमता अधिक होती है, तो हमें दिन में आकाश नीला दिखाई देता है। इसके अलावा विंची एक ही समय में एक हाथ से लिख सकते थे और सायरा दूसरे हाथ से वो चित्र बना सकते थे। कैंची का आविष्कार करने वाले विंची ही थे। इसके अलावा लियोनार्डो बहुत आसानी से शब्द को उल्टे क्रम में लिख लेते थे, जैसा कि हमें शीशे में लिखा हुआ दिखाई देता है। वो ऐसा तब करते थे जब कोई बहुत ही सीक्रेट सी बात उन्हें लिखनी होनी थी। और इसके अलावा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार लियोनार्डो की मोनालिसा पेंटिंग इतिहास में सबसे ज्यादा इंश्योरेंस वैल्यू वाली पेंटिंग है। 1911 में पेरिस के लूब्र म्यूजियम से चोरी होने के बाद यह सबसे प्रसिद्ध तस्वीर बन गई। 2015 में इसकी कीमत 780 मिलियन US डॉलर थी। और अगर हम देखें तो उन्होंने सबसे पहले पैराशूट, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन स्केच तैयार किया था। तो मुझे लगता है सारा कि किसी एक व्यक्ति के अंदर इतनी प्रतिभाएं होना वो अपने आप में एक आश्चर्य, एक अनूठी बात है।
Absolutely, Siddharth, and maybe because because Da Vinci never received any formal education beyond basic reading, writing and math. तो कह सकते हैं कि जो एजुकेशन होती है एक प्री प्लान्ड एक सिस्टम है, तो वो कहीं ना कहीं लिमिट भी कर देता है किसी इंटेलेक्चुअल इंसान को, किसी इंटेलेक्ट को, इज़न्ट इट? बट बिकॉज ही रिसीव्ड नो सच सेट स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, सो ही वाज अ फ्री फ्लोइंग माइंड, और उन्होंने खुद अपने आप को एक्सप्लोर किया। सो मे बी दैट वॉज वन ऑफ द रीजन दैट ही कुड एक्सप्लोर हिज पोटेंशियल। That was Da Vinci. Today we remembered him. Today is also the birth anniversary of Dakshinaranjan Mitra Majumdar. He was a writer, especially in Bengali language, of fairy tales and children's literature. Siddharth, literature mein to dekha jaye bahut se logon ke naam hai, lekin children's literature ke bahut kam naam hote hain. Even aaj bhi dekha jaye, it's a very much neglected, you can say, genre.
कि बच्चों के लिए कुछ लिखना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों की जो चीजें हैं उनकी पसंद का ध्यान रखना और कहीं न कहीं एक बहुत ही इंस्पिरेशनल चीज होती है.
यस, एंड मजुमदार मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू बंगाली लिटरेचर वॉज द कलेक्शन एंड कंपाइलेशन ऑफ बंगाली फोक एंड फेरी टेल्स इन 4 वॉल्यूम्स.
और आज ही के दिन हम याद कर रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, जिनका नाम खड़ी बोली को काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने वाले कवियों में बहुत आदर से लिया जाता है. और प्री प्रवास जो है उनकी एक बहुत मशहूर रचना थी. इसके अलावा उन्होंने उन्हें खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय भी हरिऔध जी को है.
टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग उस्ताद सुल्तान खान ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी. An Indian Sarangi player, classical vocalist belonging to the Sikar Gharana, he was one of the founding members of the Indian fusion group Tabla Beat Science with Zakir Hussain and Bill Laswell. He was awarded the Padma Bhushan, India's third highest civilian honour. And Sultan Khan started his career at All India Radio, as like many of the artists of those times, in Rajkot in Gujarat as a 20-year-old boy in 1960. And after having spent 8 years in Rajkot very happily, he got the chance to play with Lata Mangeshkar during her visit to Rajkot. She asked him to play the sarangi while she sang. This proved a turning point for him and his career. Thereafter, he was transferred to the Mumbai radio station, and having joined the Mumbai radio, he was not only deeply involved with the Mumbai classical music circuit, but also with the film industry.
सुल्तान खान इंदौर घराने के थे. उन्हें देश में सारंगी को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है. सारंगी के उस्ताद और हृदय को छूने वाले पिया बसंती रे, अलबेला सजनाय रे जैसे गीतों को अपनी आवाज देने वाले उस्ताद सुल्तान खान को हिंदी संगीत जगत में विशेष दर्जा प्राप्त है. उन्हें भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से साल 2012 में सम्मानित किया गया था.
जो कभी लहराया धरती का चल
सुल्तान खान पद्मभूषण के साथ ही 2 बार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और महाराष्ट्र के स्वर्ण पदक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया. 1998 में उन्हें अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्टिस्ट अवार्ड से भी नवाजा गया था. वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो आवाज है, उनका जो संगीत है, वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा.
Today we are also remembering Hasrat Jaipuri on his birth anniversary, a poet who especially wrote in Hindi and Urdu, and he was a renowned film lyricist as well in Hindi films, where he won the Filmfare Awards for Best Lyricist twice, that is in 1966 and then in 1972. His real name was Iqbal Hussain. He was born in Jaipur, and in 1940, Jaipuri came to Bombay and started working as a bus conductor, earning a monthly salary of just 11 rupees. And although he used to participate in Mushairas at that time, and at a Mushaira, Prithvi Raj Kapoor noticed Hasrat Jaipuri and recommended him to his son Raj Kapoor. Raj Kapoor was planning a musical love story Barsaat with Shankar Jaikishan. Jaipuri wrote his first recorded song Jiya Bekharar Hai for the film.
बदन पे सितारे लब
तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तुझे ना जाए, जरा पास आओ तुझे ना जाए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले हो, ओले ओले हो।
और श्रोताओं, अब समय है आपसे विदा लेने का। एक बेहतर दिन की शुभकामनाओं के साथ अनुमति दीजिए सिद्धार्थ सिंह और सायरा मुश्तबा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, लेकिन आप सुनते रहें आकाशवाणी गुड।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभा द हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन लिसनर्स, हैव अ ग्रेट डे अहेड।
नमस्कार, नमस्कार।